श्री राधे श्याम। इससे भी अच्छा कर सकते हैं आप, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। प्रदक्षिणा करते हैं, मारते नहीं है, प्रदक्षिणा मार्ग। आप लोग सब यहां पर बैठिए, अंदर आ जाइए। हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम अकेले यात्री नहीं है वृंदावन धाम में, बहुत सारे यात्री आते हैं, उनका भी ध्यान रखते हुए उनको रास्ता छोड़ना यात्रा का एक नियम है। इसलिए ये रास्ता आपको छोड़ना है। प्रभु जी आप वहां बैठे ना, आप मत बैठिए वहां पर, इधर आके बैठिए मेरे पास। कम एंड सिट हियर, उनको रास्ता दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ बैठिए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितने लोग यहां से दूर जाएंगे उतने आप कहां रहेंगे पता नहीं, इसलिए आप यहां पर आएंगे तो अच्छा रहेगा, वहां पर सुनाई भी नहीं पड़ेगा और आप कहीं और दुनिया में रहेंगे। एनीवेज यात्रा में क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें प्लान में होती है लेकिन वो नहीं हो सकती है, जो प्लान में नहीं होती है वो प्रकट हो जाती है। तो ये स्थान हमारे इस टाइम के लिस्ट में नहीं था। अभी आप देखिए जिस वातावरण में आप बैठे हुए हैं, आप अगर करोड़ों रुपये भी खर्च करेंगे ना तो ये व्यवस्था नहीं कर सकते हैं इस प्रकार की। इसलिए जहाँ भी जाएंगे ना तो सब जगह अच्छी तरह देखिए आप क्या वातावरण है, व्हाट इज द एटमॉस्फियर, व्हाट इज द अरेंजमेंट। बहुत दिव्य व्यवस्था है। और कदम का पेड़ तो मैंने भी एक लगाया है मेरे घर के बाहर यहाँ से लेके जाकर, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है वहाँ पर, वो सीधे ऐसे ऊपर चला गया है। और ये देखेंगे ना, इसका वर्णन भी नहीं कर सकते। इससे अद्भुत वो कालिया घाट का पेड़ है, जाएंगे उधर हम, वो तो उसका विस्तार ही यहाँ से लेकर ऐसा है, ये मेरा हाथ भी छोटा है उसको समझाने के लिए। और एक एक शाखा जो है वो इतनी फैली हुई है। ये कदम का वृक्ष जो है, दोनों कदम के वृक्ष है, पीछे वाला भी और ये वाला भी, और दोनों मिलके आपको बहुत सुंदर छत्र छाया दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर शीतल और विशाल छाया आपको दे रहे हैं। तो कदम का पेड़ जो है वो राधा रानी का स्वरूप है। जहां पर भी हम जाएंगे सब पेड़ों को देखते रहना, क्योंकि वृंदावन धाम के कुछ विशेष अंग हैं, उसमें से वृक्ष जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हर एक वृक्ष जो वृंदावन धाम का है वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का अर्थ क्या होता है? कल्प वृक्ष का अर्थ यह है कि जिसके सामने बैठकर आप जो भी इच्छा करेंगे वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ बैठकर पैसा, घर, गाड़ी, बच्चे, शादी, ये सब नहीं मांगता है, यहाँ पर केवल कृष्ण की भक्ति मांगते हैं जो तुरंत पूरी हो जाती है। और बाकी जो मैंने एक बताया वो सब कर्मों के आधार पर पूरा होता है, वो मांगने से पूरा होगा गारंटी नहीं है उसकी। तो ब्रज में कोई भी चीज कल्प वृक्ष के सामने बैठकर समाप्त होने वाले वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। आद्यंतु वंतु कौंते या नतेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति उन चीजों में रमण नहीं करते हैं, रस नहीं लेते हैं जिसकी एक शुरुआत होती है और अंत होता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है चिरंतन चिरंतन वस्तुओं में रस लेना। आत्मा शाश्वत है इसलिए आत्मा को भी शाश्वत ही वस्तु चाहिए रमण करने के लिए। तो इसलिए मांगने का भी एक साइंस होता है, भिक्षा करने का भी साइंस होता है, याचना करने का भी एक साइंस होता है कि क्या याचना करनी चाहिए। मन में जो आए वो बोलना नहीं चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए, मन तो बहुत चंचल है ना, क्या क्या मांगता है वो सब पूरा करेंगे तो यहाँ पर ही रहना पड़ेगा हमको जन्म जन्मांतर तक, हम जन्मनि जन्मेश्वरे यहीं रहना है वही चलेगा। तो एक वृंदावन का विशेषता है वृक्ष, और एक व्यवस्था वृंदावन की है गाय, अविभाज्य अंग है वृंदावन धाम का, जिसको काम धेनु कहते हैं, वो भी ऐसे ही है, मन चाहे इच्छा पूरी कर देती है, वृंदावन की गाय साधारण नहीं है। तीसरा है रज यहाँ की, जिसको कृष्ण का चरण स्पर्श हुआ है, विश्व में कहीं नहीं है। और अनंत वैकुंठों के ऐश्वर्य अगर आपको प्राप्त होते हैं, सोचने में क्या जाता है, सोच सकते हैं ना, अनंत वैकुंठ का ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाए तो वो सारे ऐश्वर्यों को लेकर भी यहाँ का एक ब्रज का रज का कण जो है वो आप खरीद नहीं सकते हैं, जो आपके शरीर पे सब जगह छाया हुआ है, क्योंकि तो इसमें कृष्ण प्रेम का रहस्य छुपा हुआ है, राधा कृष्ण की युगल प्रीति का सारा राज छुपा हुआ है उसके अंदर, तो देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। और जमुना जी एक अविभाज्य अंग है, गोवर्धन अविभाज्य अंग है, मोर पंख यहाँ पर, मोर पंख दोनों यहाँ के अविभाज्य अंग है, मुरली यहाँ का अविभाज्य अंग है, और कहीं नहीं है, ब्रज में ही है। तो ये सारे चीजों पर हमको चिंतन करना है, क्योंकि ये ब्रज के परिकर हैं, ये ब्रज को बनाते हैं, ब्रज को अर्थ देते हैं, ब्रज को संपूर्ण बनाते हैं, ब्रज को जो आनंद है उसका अनुभव कराते हैं। हरे कृष्णा। तो ये आपको आज अनंत बार भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये स्थान इतना पवित्र है, इतना दिव्य स्थान है कि वज्रनाभ ने जो महत्वपूर्ण मूर्तियां बनाई उसमें से एक मूर्ति यह है, वज्रनाभ हैज मेड दिस मूर्ति प्राचीन। और इस स्थान के और एक विशेषता है कि कुछ स्थान यात्रियों को बड़े पसंद है और कुछ स्थान लोकल ब्रजवासियों को पसंद है, और जरूरी नहीं कि आपका उनका मेल हो जाएगा ठीक से, कि भाई आपको भी पसंद है उनको भी पसंद है, बहुत मुश्किल है। तो ये ब्रजवासियों का, पुराने बुजुर्ग वृद्ध ब्रजवासियों का ये श्रद्धा स्थान है। आप किसी ब्रजवासियों को पूछेंगे जो कहाँ जाए दर्शन करने के लिए, तो कुछ गिने चुने स्थान बताएंगे आप, गरुड़ गोविंद जरूर जाना। और एक कॉमन हमारा और ब्रजवासियों का श्रद्धा स्थान है, वो है गोवर्धन, तो हमें भी बहुत बड़ी श्रद्धा है और ब्रजवासी भी बड़ा मानता है गिरिराज जी को, कुछ भी हो जाए जीवन में गुजरा गिरिराज जी का संबंध तुरंत जोड़ देते हैं। तो अगर ब्रज में आना है, ब्रज की यात्रा करनी है, तो जो जो दिखता है ना, जैसे पेड़ दिखते हैं वो आपको बार बार देखना है, अरे कदम का पेड़ है, अरे नीम का पेड़ है, अरे बरगद का पेड़ है, अरे पीपल का पेड़ है, अर्जुन का पेड़ है। मैं उस दिन उधर मदन टेर पे गया था तो उधर नाग चंपा का पेड़, अद्भुत पेड़ मुझे दिखाई पड़ा वहां पर। उसमें इतनी सुगंध होती है कि सारे नाग वहीं खड़े होते हैं आके वो सुगंध के प्रभाव से, और अभी तक उसमें फूल लगे नहीं थे, केवल पत्ते ही पत्ते थे, उसको भी इतनी खुशबू थी। ये सारे दिव्य वृक्ष, वतलता, वेली, ये सब ब्रज में होते हैं, और ये सब श्री जी का स्वरूप है, कल्प वृक्ष तो है ही, राधा रानी का स्वरूप है। और एक स्वरूप है कि सारे ऋषि मुनि अपने जीवन में जब भजन करते हैं तो एक कामना करते हैं कि हमें ब्रज में लता पता बनाकर जन्म दीजिए, ताकि हम लता पता बनकर यानी पेड़ बनकर यहाँ पर भजन कर सकें। पांडव भी यहाँ पर पांच पेड़ बनकर राधा कुंड के किनारे भजन कर रहे हैं, जन्म हो गया उनका, लीला समाप्त हो गई, लेकिन स्वयं वो जो जीव हैं पांच जीव, वो पांच पेड़ के रूप में राधा कुंड में, श्याम कुंड के किनारे में भजन कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ की योनि सबसे निचली मानी गई है, लेकिन एट द सेम टाइम जब पेड़ धाम में होता है तो वो पेड़ का महात्म्य हजारों करोड़ों गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो धाम का पेड़ है। जैसे मैंने बताया कि वो सारी चेतनाओं को ग्रहण करता है। अभी आपको वो पेड़ अभी इस वक्त सारे चेतनाओं का सार आपको दे रहा है। आपका एंटीना कितना जागरूक है, कितना चार्ज्ड है, उसके ऊपर डिपेंड है ना। मैंने बताया ना आपको, याद है ना आपको, आपका कमल कितना खिला हुआ है, इसके ऊपर आपके अंदर वो सब चेतना प्रवेश करेगी। और ये जो छोटे छोटे लगे ना फूल, जो काले हो गए अभी, स्मॉल स्मॉल, वो सूखे हुए कदम फूलों फूलों का रेमनेंट है, वो अवशेष है। ये सावन भादों में उसके फूल आते हैं। एक फूल आएगा ना, एक फूल, तो एक हमारी बम्बई की कॉलोनी को खुशबूदार कर सकता है वो एक फूल। इसलिए ब्रजवासियों की इच्छा थी कि मेरे आंगन में कदम का पेड़ होना चाहिए, तो उन्होंने, मैंने लाया और उन्होंने खुद आके वहाँ पर प्लांट किया उसको। अभी सावन भादों के महीने में पूरे कॉलोनी में उसकी खुशबू आती है, ब्रज की याद आती है ना, क्योंकि एक केली कदम है, एक बंगाली कदम होता है, इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और फूल भी बड़ा बड़ा होता है ऐसा ऐसा। और ये केली कदम है, इसके फूल इतने से होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खुशबू इसमें रहती है। तो बंगाली कदम वो मायापुर में रहते हैं ज़्यादा करके, और ये केली कदम है। केली यानी जिसके नीचे भगवान ने लीला किया है, केली किया है, केली यानी लीला, उसको केली कदम कहते हैं। बंसी की तान सुनाने को कब आओगे शाम कदम के तले। इसके पीछे भगवान ने बहुत लीला किया है कदम के पेड़ के नीचे। तो ये स्थान जो है इसका नाम है छठीकरा। क्या बताया मैंने? छठीकरा नाम पड़ा है षष्ठी देवी के ऊपर। षष्ठी देवी पार्वती का एक स्वरूप है, लेकिन विशेष उसका महत्व यह है कि जन्म होने के बाद छठे दिन में बालक के लिए षष्ठी देवी का पूजन होता है, खास करके बिहार में। वो कितना पॉलिटिक्स चलता है ना, मैं छठ पूजा के ऊपर इतना पेपर में न्यूज़, ये मैं करूँगे, हम करेंगे करेंगे, बोले हम नहीं करने देंगे, हम करेंगे करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। वही है वो छठ पूजा, उसको षष्ठी पूजन कहते हैं। नित्यानंद प्रभु का भी एक चक्र में षष्ठी पूजन किया गया था। वो षष्ठी देवी अभी भी नित्यानंद प्रभु के गाँव में है। और छठीकरा नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पर भी षष्ठी देवी का मंदिर है, लेकिन वो हाईवे के उस तरफ है और अभी उसका इसको पता भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर हुआ करता था। और यशोदा माई ने श्री कृष्ण भगवान के जन्म होने के बाद में उनका षष्ठी पूजन यहाँ कराया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है छठीकरा, है ना। यहाँ का कैसा है ना ब्रज का, एक सुंदर बात एक संत ने बताई मुझे कि यहाँ पर लीला पहले होती है, स्थान का नाम बाद में होता है। षष्ठी देवी का पूजन कृष्ण के लिए किया, फिर स्थान का नाम पड़ गया छठीकरा। भगवान ने छलांग लगाई जमुना जी में जन्म होते ही, है ना। तो वसुदेव क्या बोलते हैं, अरे कोई लो, अरे कोई लो, कोई लो, कोई लो, लाला को ले लो, कोलो लाला, लाला को ले लो, गिर गो। तो उस घाट का नाम पड़ा कोयलो घाट। आज भी है वो कोयलो घाट। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो लीला के ऊपर बने हुए हैं। से मदन टेर, वहां पर मदन यानी क्यूपिड कामदेव ने भगवान को अपना पुष्प बाण मान मारकर काम विद्ध करने का प्रयास किया था। तो स्थान का नाम पड़ा मदन टेर, जहां पर भगवान ने मदन को पिघला दिया, मदन परास्त हो गया वहां पर खुद ही। भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान तो अपना लीला कर रहे थे, उसको देखते देखते ही वो मदन जो है कामदेव वो पिघल गया। तो वैसे यहां पर षष्ठी पूजन हुआ और स्थान का नाम पड़ा छठीकरा। तो ये भगवान की सख्य लीला की बड़ी प्रिय स्थली है, यहां पर भगवान गौचारण करते हैं। और छठीकरा ये स्थान वैसा भी है जहां पर भगवान को लेकर, कृष्ण बलराम को लेकर यशोदा नंद रोहिणी इन्होंने कुछ समय निवास भी किया है। एक समय था जहां पर गोकुल में राक्षसों का बड़ा आतंक हुआ। भागवत में तो कुछ कुछ भागवत में राक्षसों का वर्णन दिया है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग हर दिन मथुरा से एक राक्षस आता था कंस की तरफ से कृष्ण को मारने के लिए, और फिर यहीं से उसका काम तमाम हो जाता था। वो भी लौट के नहीं गया बताने के लिए क्या हुआ। खाली खबर आती थी कि गया वो वापस नहीं आया, सबका रिटर्न टिकट वेस्ट। सबको ऐसा लगता था कि मैं जाके बताऊंगा कि मैं इनको मार के अभी जाऊंगा वापस, लेकिन कोई वापस लौट के नहीं गया। एक ही कंस था, वो लौट के गया वापस। बीच में वो उधर कन्या बन गया बरसाना में, 6 महीना कंडे लेपे उसने गोबर के, और उसके बाद में उसको भेजा। मतलब कंडीशन कंडीशन अप्लाई, दोबारा आओगे तो परमानेंट कन्या बन जाओगे, ये कंडीशन पे उसको भेजा। तो उसको लौट गया, वो वापस नहीं आया, मतलब बरसाने नहीं गया, लेकिन मथुरा से बरसाना गया, बरसाने से लौट गया, और कोई लौट के नहीं आया। तो ये बात मैं क्यों बता रहा था, तो छठीकरा में भगवान की सख्यलीला का स्थान है, और यहाँ पर राक्षसों का आतंक हुआ था। तो उपनंद महाराज ने नंद महाराज को सलाह दिया कि अभी ये जगह सुरक्षित नहीं बची, जाना चाहिए हमको यहाँ से। तो फिर वो शिफ्ट हो गए वहाँ से, और रास्ते में छठीकरा में आके रुके, और यहाँ पर भी कुछ समय निवास किया उन्होंने। कुछ राक्षसों का वध जो है वो छठीकरा में रहते हुए किया है। तो वो ऐसा गोपाल चंपू में वर्णन है कि छठीकरा में नंद बाबा, ध्यान से सुनिया, नंद बाबा और विश्वानु महाराज, राधा रानी के पिताजी, कृष्ण के पिताजी, ये दोनों अच्छे घनिष्ठ मित्र थे, और दोनों के शिफ्टिंग साथ में हो रहा था। इनका राज्य पूरा शिफ्ट हो रहा है, इनका भी राज्य पूरा शिफ्ट हो रहा है। पूरी जनता, मतलब गरुड़ों की जनता थी उस समय, सब बैलगाड़ी में चल रहे हैं, और कुछ रॉयल बैलगाड़ियाँ भी हैं जिसके अंदर मखमल पहना हुआ है, उसके अंदर यशोदा बैठी है, नंद महाराज बैठे हुए हैं, सब लोग बहुत रॉयल, और बाकी सब सामान है, कुछ चल रहे हैं, ब्राह्मण लोग श्लोक गा रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं। और उसको छकड़ा कहते हैं बैलगाड़ी को, और बाकी सारे छकड़े जो हैं बचे हुए वो ऐसे उनको कवर करके चल रहे हैं एज अ प्रोटेक्शन, और वो कारवां चल रहा है, बीच में भी बैलगाड़ी है लेकिन एक अर्ध चंद्राकृति बैलगाड़ियों का कवर है उसको, जो उनको कवर करते हुए जा रहे हैं, ऐसा सीन है। उनका भी वही सीन है, और दोनों पैरेलल चल रहे हैं एक साथ, दोनों के कारवां साथ चल रहे हैं। तो शास्त्र में क्या वर्णन दिया है कि दोनों ने जब भी छठीकरा में अपने तंबू लगाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कितना भी नींद आएगा सोना नहीं आपको, क्योंकि उसके बीच में कुछ कथा निकल जाएगी, स्लिप ऑफ। ओके, तो शास्त्र में ऐसा वर्णन दिया है कि दोनों महाराजों के तंबू एक दूसरे से चिपके हुए थे, और यह भी वर्णन दिया है कि ब्रिश्वानु महाराज का तंबू राधा कुंड के पास में बसोती गांव में था, तो यहां से 28 किलोमीटर है, और ब्रिश्वानु महाराज का तंबू बसोती गांव में था, नंद महाराज का तंबू छठीकरा में था, दोनों स्थान आज भी 28 किलोमीटर दूर है। और शास्त्र में क्या लिखा है कि दोनों तंबू एक दूसरे से सटे हुए थे। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, विशाल विशाल तंबू थे जिसका एक एंड टच कर रहा है, यानी लग के है, लेकिन दूसरा एंड किधर है, छठीकरा में, तीसरा एंड किधर है, बसोती गांव में। ऐसा सुंदर वर्णन दिया है उसमें। तो एक बार वहां से कृष्ण बलराम यहां पर अपना गौचारण करने के लिए आए थे, और भगवान यहाँ पर अपना सारा ऐश्वर्य छोड़ के आते हैं, है ना, लेकिन फिर भी कभी कभी मूड आए तो दिखा देते हैं। क्या अभी मर्जी है उनकी, महाराज है वो स्वयं अभिज्ञ स्वराट, उनका कोई इच्छा का कोई लिमिट नहीं है, कंट्रोल नहीं है, जब चाहे जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आए तो श्री रामा है ना, उनके मित्र राधा रानी के बड़े भाई हैं वो, और कृष्ण के परम प्रिय सखा हैं। श्री रामा को बताया, श्री रामा गरुड़ बन जा, तो सुदामा तत्क्षण गरुड़ बन गए, यानी मनुष्य का स्वरूप खत्म हो गया और पक्षी बन गए, और ये खुद उस पर जाके बैठ गए, लेकिन खुद कृष्ण बन के नहीं बैठे, 12 भुजा वाले विष्णु बनकर बैठे उसके ऊपर। अचानक सबके आंखों के सामने ये रूपांतर हो गया उनका, सब लोग देखते रह गए। तो जब कृष्ण ने 12 भुजाओं का रूप धारण किया और सीदामा गरुड़ बन गए, तो पूरा वैकुंठ प्रकट हो गया यहाँ पर। तो जो राधा रानी साथ में थी वो लक्ष्मी बन गई, तो बाजू में लक्ष्मी खड़ी है ना, वो लक्ष्मी नहीं है, वो वैकुंठ के प्रभाव से उसने अपना भी रूप लक्ष्मी का बना दिया है। और जैसे ही द्वारका धाम का वैकुंठ यहाँ प्रकट हुआ, तो दोनों चरणों के नीचे रुक्मिणी और सत्यभामा प्रकट हो गई। इसलिए यहाँ पर सत्यभामा और रुक्मिणी भगवान के चरणों में हैं। और भगवान भले 12 भुजा वाले ऐश्वर्य संपन्न भगवान ने दर्शन दिया है, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे ना तो उनके पैर ऐसे हैं दोनों। आप करके देखो, ऐसे नहीं होगा, केवल बालक का होता है ऐसा पैर। जब बालक सोता है ना तो उसके पैर ऐसे गिर जाते हैं, हम लोग हाथ भी दिखा सकते नहीं ऐसे, लेकिन बालक के दोनों पैर ना ऐसे गिर जाते हैं फोल्ड किए हुए, क्योंकि वो बालक है भाई। जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके पैर से बीच में रहते हैं। आप एक भी सो के देखिए फोल्ड करके, और उसको कोशिश कीजिए साइड में करने की, वो बीच में रुक जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान बड़े छोटे बालक थे उस समय, इसलिए गरुड़ जी पर जब बैठे तो उनके पैर ऐसे हैं पूरे 180 degrees कंप्लीटली। तो बाल स्वरूप का प्रतीक है वो, ऐश्वर्य का रूप दिखा रहे हैं वैकुंठ का, लेकिन बाल स्वरूप में ही दिखा रहे हैं। और तभी ये गोविंद कुंड प्रकट हुआ है भगवान के विहार के लिए। इतना विशाल कुंड है, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ हमेशा ना, कि आपको आज जो दिख रहा है वो कल नहीं दिखेगा। हमने पहले ये कुंड पानी से भरा हुआ देखा है, आज वो सूखा हुआ दिख रहा है। कितनी बार इसकी मरम्मत की गई, किसी बार टूटा हुआ किनारा देखा है, अभी बना हुआ तो किनारा भी देखा है, लेकिन पानी अभी बहुत दिन से भरा नहीं है, उसके अंदर पेड़ भी आने लगे अभी। तो इसलिए आज के तारीख में जो ब्रज के दर्शन आपको हो रहे हैं उसको हृदय में संभालो, उसके बाद में वो हृदय में रहेंगे। जैसे हम लोग 1986 में आए थे ना, तो मक्खन जैसे मुलायम धूल में परिक्रमा रोड पे हमने महाराज जी के साथ में परिक्रमा की थी। अभी मक्खन जैसी मट्टी है ही नहीं, वो सब सीमेंट का कंक्रीट का डांबर का रास्ता बन गया है। तो वो अभी जो दृश्य है वो खाली इधर है और कहीं नहीं है। इसलिए हम बार बार विनती करते हैं, ब्रज में सारी इंद्रियों को सतर्क लेकर चलो, आप सतर्क रखकर चलो, ताकि एवरीथिंग कैन बी एब्सॉर्ब्ड एंड स्टोर्ड परमानेंटली। आखिर में आपके साथ क्या जाएगा, जो श्रुति में है वही जाएगा। भगवान क्या कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम कहते हैं, श्रवण भावम या कीर्तन भावम नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम, या अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, कीर्तन मुक्त्वा, श्रवण मुक्त्वा, अर्चन मुक्त्वा नहीं कहते हैं, स्मरण मुक्त्वा कहते हैं। क्योंकि सारे आपका भजन का निचोड़ क्या है, स्मरण। आपकी स्मृति में कितना आया है, वो मेमोरी में कितना आया है, वही आपको एंड में काम आएगा। जो आया और स्मरण में नहीं रहा, गया निकल के विस्मृति में चला गया, तो आपके काम नहीं आएगा वो एंड में। तो आपको जीवन में ऐसे रहना है, ऐसे अंतर्मुख होकर रहना है कि जो भी आप देख रहे हो सुन रहे हो उसको ग्रहण करना है, ग्रहण करना है और ग्रहण करना है, ताकि वो स्मृति में चला जाए, मेमोरी बैंक में चला जाए, और सारी मेमोरी बैंक आपको एंड में काम आएगी। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान बताते हैं कि अगर आप मेरा स्मरण करते हो अंत में, समझो आपको ये पेड़ की छाया याद आएगी तो भी काफी है, क्योंकि आप धाम को याद कर रहे हैं, ये भी आपको भगवत के धाम पहुंचा सकता है। या कोई कथा याद आ गई, या कोई गरुड़ गोविंद का दर्शन याद आया, अगर आपने देखा है तो उस तरह से याद आया, तो आपको भगवान के पास पहुंचाने के लिए काफी है ये। तो हम आपको कई करोड़ों चीजें दिखा रहे हैं, करोड़ों सुना रहे हैं, कितने आपके स्मृति में रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। कितना आप लिख रहे हो, कितना रिवाइज कर रहे हो, कितना दूसरों को बता रहे हो, कितना मेमोराइज कर रहे हो, कितना याद कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी स्मृति का दर्जा बनेगा, और वो दर्जा ही तय करेगा कि आप कहाँ जाएंगे जीवन के अंत में। और भाइयों और बहनों, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। यहाँ पर समय की कोई अनलिमिटेड प्रोविजन नहीं है कि हम कल करेंगे, हम परसों करेंगे, समय बहुत है, ऐसा नहीं है। समय क्या, अभी अभी भी हम लोग 22 साल की उम्र में ऐसे यात्रा करते करते घूमते घूमते आए थे, 40 साल हो गए उसको, इमेजिन, पता ही नहीं चला। अभी आपको लगता होगा ना, और 83 कभी हो गया पता नहीं चला। अभी एक दिन घंटी बजेगी, पता ही नहीं चलेगा कब घंटी बजेगी। इसलिए पास करने के लिए यहाँ पर टाइम बहुत अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो टाइम अवेलेबल है उसका पूरा उपयोग आपको करना है। और हमारे जीवन का समय का जो होता है ना क्वालिटी, आपके जीवन में जो समय है, जैसे आपका युवा अवस्था में एक समय की क्वालिटी है जो आपको एक प्रकार का काम करने को मौका देती है। बुढ़ापा होने बाद क्या होता है, वही कान है नहीं सुनाई पड़ता है, वही आंख है दिखाई नहीं पड़ता है, वही पैर है चल नहीं सकते हैं, है ना, दौड़ नहीं सकते हैं, चढ़ पो भाई 50 सीढ़ी है तो मंदिर दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आगे वाले काल में जो भी समय रहेगा उसमें हमारी इंद्रियां आपको उतना काम नहीं देगी जितना युवा अवस्था में काम दे रही थी। इसलिए आज जो है, हाथ पैर चल रहे, सब कुछ चल रहा है, कुछ कोई युवा अवस्था में है, कोई है बुजुर्ग अवस्था में, लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक है, तब तक जो है ना बटोर लो, कैप्चर एवरीथिंग, डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि वो लौट के नहीं आता है कभी। हम कितना भी कोशिश करेंगे, अरे अभी ध्यान में आ रहा है कि जीवन में भक्ति का कितना महत्व था, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, आगे रो रो के भी कुछ नहीं कर सकते। जो पूंजी में है वही काम आएगा, वही आप एनकैश कर सकते हो, बाकी नया नया कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ग्रहण करते रहो। धाम की यात्रा का मतलब यही है, कथा सुनना बहुत जरूरी है, दर्शन करना बहुत जरूरी है, सतर्क इंद्रियों से वो करना है ताकि हृदय के पटल में, मस्तिष्क के मेमोरी कार्ड में वो सब सेट हो जाए। तो सेट कैसे करें? रिविजन, सुनते समय ध्यान से सुनना और नोट्स बनाना। सेकेंड कार्य है लिखना, क्योंकि लिखने से क्या होता है, आप सतर्क होते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूं पता है तो याद आता है। उसके बाद में लिखे हुए नोट्स को पढ़ना, थर्ड स्टेप। चौथी स्टेप, जो आप लिखा है पढ़ा है दूसरों को बताना, वो सबसे बेस्ट चीज है। आपने आज कुछ सुना और तुरंत उसको रिवाइज किया, किसी को बताया, आपकी मेमोरी परमानेंट हो गई। उसमें कुछ मिस हो गया तो तुरंत आपको सेटअप करना है उसको और आपकी मेमोरी फिट कर देनी है, और जितना बार आप दोहराओगे उतना बार आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। ये छोटे से फॉर्मूला है, आप सब लोग इसको अपने MBBS एग्जाम में, BTEC एग्जाम में, IT एग्जाम में, सब जगह ये अपनाते हो, वही करते हो, अंडरलाइन करते हो, नोट्स बनाते हो, रिवाइज करते हो, डिस्कस करते हो, चर्चा करते हो, सब करते हो। भगवान के लिए नहीं करते हैं, MBBS के लिए करते हैं, भगवान के लिए करना चाहिए, क्योंकि सारा नॉलेज जो MBBS का जो है ना वो खाली पेट भरने के लिए है। ये नॉलेज जो है वो पार कराने वाला नॉलेज है, सबको पार करा देगा। तो ये लीला यहाँ पर हुई है, भगवान ने कुछ समय के लिए यहाँ पर वैकुंठ प्रकट किया है और उसका निशाना यहाँ पर है। तो ये विग्रह वज्रनाभ ने स्वयं बनाया है। और कुछ जब ये आतंक हुआ मुसलमानों का, यवनों का, तभी पुजारी लोग ये विग्रह जो है वो गोविंद कुंड में डालकर भाग गए थे। जब आतंक समाप्त हो गया तो फिर गोविंद जी, गरुड़ गोविंद जी, उनका नाम है गरुड़ गोविंद जी, दोनों है ना उसके अंदर, जैसे गरुड़ जी का जो मुख है ना वो ऐसे सामने में वस्त्र में छेद है, उनका मुख बाहर आता है, और जब नीचे के वस्त्र उठाते हैं तो पैरों का दर्शन होता है, लेकिन जब नहीं होता है तो खाली वो गरुड़ जी का मुख ऐसे दिखता है। तो नीचे गरुड़ जी है, ऊपर गोविंद जी बैठे हुए हैं। तो ये गरुड़ गोविंद जी ने स्वयं स्वप्न दिया पुजारी को कि मैं इस जल के अंदर हूँ, मुझे निकालो और दोबारा प्रस्थापित करो। तो यही वो कुंड है जहाँ पर वो विग्रह भी बाद में प्राप्त हुए थे, जो ओरिजिनल विग्रह थे। ऐसा ये बड़ा अद्भुत स्थान है और ये प्राचीन स्थान है, पुराने ब्रजवासियों का श्रद्धा स्थान है। सुबह 3:30 बजे पूरा विग्रह जो है ना वो निर्माल्य अवस्था में होता है, पूरे वस्त्र उतार कर आप 3:30 बजे आकर उनका अभिषेक का दर्शन कर सकते हैं, और कुछ डोनेशन देंगे तो खुद भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। 1.5 घंटा चलता है वो, 3:30 से 4:15। दही और दूध का मिश्रण होता है और हनी डालते हैं उसमें, एक मिक्सर करके देते हैं, फिर आप उनको नहलाते रहो, मालिश करते रहो, नहलाते रहो, मालिश करते रहो, फिर गर्म पानी से नहलाते हैं, बहुत सुंदर, फिर वस्त्र पहनाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत निरपेक्ष यहाँ पर सेवा होती है, कोई लालच नहीं है, कभी भी आओ, कथा करो, बैठो, प्रसाद ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यहाँ पर छठीकरा में बहुत सुंदर लीला हुई है, वो आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि उधर 1:30 का टाइम है ना आपका। तो जब ये जा रहे थे ना यहाँ से, छठीकरा से आगे कुछ समय रहे, फिर छठीकरा से आगे नंदगांव बरसाना में जाके बस गए। एक कारवां चला गया और बरसाना में बस गया, एक कारवां गया नंदगांव में बस गया, समझ में आया ना बराबर से आपको। लेकिन जब यहाँ से निकल रहे हैं तभी यशोदा के गोद में कृष्ण हैं, एक छकड़े में, एक छकड़े में रोहिणी के गोद में दाऊ जी हैं बैठे हुए हैं, पर बाकी सब उपनंद की पत्नी प्रभावती, वो सब तो अलग अलग छकड़े में बैठे हुए हैं, बाकी सब चल रहे हैं। तो उसमें एक 105 साल की एक बुढ़िया है, गोपी है वो, उसके मुंह में दांत नहीं है, बहुत बूढ़ी है। वो देख रही है कि मैया के गोद में लाला बैठे हैं, सोच रहे हैं कि क्या सुंदर दृश्य है, इतने प्रेमी मैया, इतना प्रेमी बालक, दोनों बैठे हैं। तो उसके मन में ऐसा एक सहज भाव आता है, कितना अच्छा होता अगर वो मेरे गोद में होते। कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जेलसी नहीं है कि उनके गोद में क्यों, मुझे मेरे गोद में क्यों नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही विचार आया कि मेरे गोद में होते तो भी कितना मुझे अच्छा लगता। अभी कितनी सिंपल डिज़ायर है, लेकिन वो प्योर डिज़ायर है, उसके अंदर स्वार्थ नहीं है कि मेरा गौरव बढ़ेगा, सब लोग मेरे ओर देखेंगे क्योंकि कृष्ण मेरे गोद में है, सबकी नज़र मेरे ऊपर आके टिकेगी, वो मेरा नाम हो जाएगा कि मेरे गोद में बैठे, ऐसा नहीं है। एक सहज प्रेम वात्सल्य पूर्ण एक इच्छा है उनकी कि मेरे गोद में बैठ जाए। अभी वो जो गोपी है वो बहुत ही सिंपल, गरीब और सीधी सादी गोपी है, ऐसा कोई चांस नहीं है कि उसके गोद में भगवान आ सकते हैं, क्योंकि मैया बैठी हुई है, बैलक गाड़ी चल रही है, उसके गोद में आने का प्रयोजन ही क्या है, क्या कारण होगा कि वो मैया के गोद में आए, उससे छोड़ के मैया के गोद छोड़ के उसके गोद में आएगा। तो फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू देयर वाज नो चांस फॉर हर टू हैव कृष्णा इन हर लैप। लेकिन हमारे भगवान जो है ना वो अंतर्यामी है, वो सबके दिल की बात जानते हैं, अभी आपके दिल में क्या चल रहा है वो सब भगवान को पता है। इसलिए आप दुनिया को उल्लू बना सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं बना सकते, खुद को भी उल्लू बना सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं बना सकते। तो भगवान ने सोचा कि इस बुढ़िया की इच्छा पूरी कर देते हैं। वे बालक है, छोटा सा, गोद में बैठा हुआ है, तो क्या लीला करते हैं बालक लोग, रोते हैं, है ना। तो पहले रोते नहीं, वो पहले प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, ये कौन है? तो मैया कहती है तोता है। उसके बाजू में कौन है? तो बोलते मैना है। तो कहते तोता मैना के कौन लगती है? तो बीवी लगती है। फिर बैल को पूछा, ये कौन है? तो बोले बैल है। फिर उसके बाजू में कौन है? बोले गाय है। ये कौन लगती है? उसकी बीवी लगती है। फिर तोता हो गया, मैना हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, कोयल हो गया, फिर मेल फीमेल, और आप मोर मोरनी, और आप सब पूछते जाओ, एक जानवर है, एक पंछी है, जानवर है, पंछी है, जितने भी दिखे ना, भगवान भी इतने चतुर हैं। खाली कपल को ही पूछा, अकेले वाले को नहीं पूछा, जहाँ पर पति पत्नी के रूप में जो खड़े हैं, नर मादी के रूप में, उनके ही बारे में जितना पूछना है, पता नहीं हजारों के बारे में पूछा होगा। हर बार माता ने, जैसे माताएं हमेशा है ना, कभी परेशान नहीं होती है बच्चों के प्रश्न से। हम जब बड़े होते हैं तो हमारे बूढ़े माता पिताओं के प्रश्न से परेशान हो जाते हैं, अरे माँ बाप कितनी बार पूछते हो, ये दवा बोला ना खाना है आपको, कितनी बार पूछते हो, 3 बार लेना है कि 4 बार लेना है। लेकिन मैया को बालक जो है ना खाना खाते हुए, वो कौन है? तो बोलेगा कौवा है, एक दाना खाएगा। मैया वो कौन है? वो कौवा है बेटा, और एक दाना खाएगा। बोलेगा मैया वो कौन है? हाँ बेटा वो कौवा है। और जितनी बार पूछोगे ना उतना और वात्सल्य से समझाएगी उसको, वो परेशान नहीं होगी, कितनी बार पूछता है, चुपचाप खाना खाया अभी चल, ऐसा कभी माता बोलती नहीं है। और जितनी बार पूछेंगे ना उतना अधिक कोमलता से, अधिक वात्सल्य से, अधिक प्रेम से उसका उत्तर देगी। अजीब बात है ना ये, इसका हमने एक नाटिका की थी कि वही माता बालक के क्वेश्चन का 50 बार प्रेम से आंसर देती है, फिर वो माता बुढ़ी होती है, लड़का जवान होता है, अभी वो माता बच्चे को पूछ रही है ये दवा कितनी बार लेना है, तो एक बार तो बता देता है, दूसरी बार चिल्लाना शुरू कर देता है तुरंत। तो मैया ने सारे प्रश्नों का सारे उत्तर बड़े प्रेम से दिए, और अचानक कृष्ण भगवान जोर से रोने लगे। अभी क्या कारण रोने का है? आपके जितने सवाल थे, जितनी जिज्ञासा थी, सब पूरी कर दी। अभी ये पूछ रहे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो कभी कभी बच्चे कैसे होता है ना, समझो आप रो रहे हो, मैंने पूछा क्या क्यों रो रहे हो, आप और जोर से रोते हो क्योंकि आपको वो कारण याद आता है जिसके लिए आप रो रहे हो। पता है ना ऐसे, यू रिमेंबर द रीजन वाई यू आर क्राइंग एंड यू आई रिमाइंड यू ऑफ द रीजन बाय आस्किंग क्वेश्चन, सो यू क्राई मोर। तो इसको पूछा तो और जोर से रोने लगा, अरे बाबा क्यों रो रहे हो, और जोर से रो रहे। अभी देखो जब भगवान रोते हैं ना सारा कारवा रुक जाता है, सारे ब्राह्मण श्लोक बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान रो रहे हैं मतलब इट्स अ बिग थिंग। ब्रजवासियों के लिए कृष्ण सबसे केंद्र स्थान में, उनकी खुशी, उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद, वो सब सेंटर में है सब कुछ। और वो रोने लगेंगे तो सब कुछ छोड़ के खड़े हो जाते हैं, सब गोपियां इकट्ठा हो गई, उसको समझा रहे हैं, क्यों रो रहे हो, तो और रो रहा है, बोलता ही नहीं है। तो बाद में ना वो आपको पता है कैसे बालक रोता है ना, ऐसे मतलब बोल भी पाता नहीं है, बोलने की इच्छा है लेकिन बोल नहीं पाता है, तो सिसकियां भर के रोता है। तो वो सिसकियां भर रहा है तो पूछ रहे तो बोल नहीं पा रहा है। बहुत देर के बाद सिसकियां भर के होना सब कुछ हो गया, फिर बोला, क्या बोला होगा, ले सबकी बीवी है मेरी ही नहीं है। देखो तोता की भी है, कौवा की भी है, कोयल की भी है, गाय की भी है, भैंस की भी है, सबकी बीवी और पति है, मैं ही अकेला हूं जो मेरे पास पत्नी नहीं है। अरे लाला तू छोटा है, तू भी लाला है, तू जब जब बड़ा होगो तो बहुत सुंदर दुल्हन लेके आएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी पसंद वाली, अभी तो बड़ा होना है। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे अभी का भी बीवी चाहिए। अरे वो प्रॉब्लम हो गया, अभी क्या करे बालक का, बाल हट्टा ऐसा होता है ना कि बाल हट्टे तो महान महान राजा और देवता भी तोड़ नहीं सकते हैं, बाल हट्टा ऐसा होता है कि मजबूर हो जाए सब लोग, कितने बड़े पावरफुल होंगे, बालक के सामने उसका हट्टा उसके अश्रु के सामने सब पिघल जाते हैं। तो अभी गोपियों की मीटिंग होती, क्या किया जाए, समझाए कैसे उसको, तो वो तो बोल रहा है मुझे अभी का भी बीवी चाहिए, मैं अभी आगे ही बढ़ने दूंगा नहीं आपको। तो बोले ठीक है, सब लोगों ने मीटिंग करते हैं, तय करते हैं कि पहले इससे छोटी वाली, फिर इसके उम्र वाली, फिर थोड़ी बड़ी वाली, फिर उससे थोड़ी बड़ी वाली, फिर थोड़ी बड़ी वाली, फिर युवा अवस्था वाली, फिर अनमैरिड से लेके मैरिड, फिर मैरिड से लेके बच्चे वाली, फिर जवान बच्चों वाली, फिर बुढ़िया, फिर अति अति बुढ़िया, फिर बिना दांत की बुढ़िया, ये सब ग्रुप बनाते पूरा और सब प्लानिंग करते हैं। बोलते आपको हम दिखाएंगे, आप पसंद करो, फिर विवाह भी कभी विवाह कर देंगे। क्या करेंगे, व्हाट टू डू, कृष्णा इज क्राइंग। तो उनसे छोटे वाले एक एक करके आते हैं, सबको सामने आए, सामने आए, सबको बात करके, तो छोटे वाले हो गए, इक्वल आ गए सब लोग, इक्वल वाले सबको मना कर दिया, फिर बड़े वाले कुपियों को चालू किया, वो सबको एक एक करके मना किया। देखो कितना समय गया होगा उसके अंदर एक एक को खड़ा करने, इतने 400 लोगों में से भी खड़ा करेंगे तो भाई शाम तक डिनर तक टाइम लगेगा उसको। ऐसे करते 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 अविवाहित खत्म, विवाहित, विवाहित के बाद, विवाहित के बाद नन्हे बच्चे वाली समाप्त, उसके बाद बड़े बच्चे वाली, उसके बाद बाल बाल खेलने वाले, ओ उनकी माताओं को भी सबको कहा, अरे भाई किसको तो पसंद कर, बड़ी छोटी चलेगा, हाँ बोल दे एक बार शादी कर देंगे तो आपका हमारा कारोबार आगे बढ़ेगा। ऐसे करते करते ना सबको बात कर दिया, रिजेक्ट। क्या करें अभी, 105 साल की वो बुढ़िया बची, अभी क्या करें, अभी जो है वो है, अभी वी कांट हेल्प इट। उसको भी प्रस्तुत किया, उसको प्रस्तुत करते ही उसको गोद में छलांग लगा के बैठ गए, यही मेरी बीवी है, गोद में छलांग मार के बैठ गए उसके, यही मेरी बीवी है। तो गोपियों ने बहुत तालियां बजा, बजाओ गोपियों ने कहा कि जोड़ी बहुत जोर की है, या के मोड़े में दांत ना आए, वा के मोड़े में भी दांत ना आए, इसके मुंह में भी दांत नहीं है, उसके मुंह में भी दांत नहीं, बहुत परफेक्ट जोड़ी है। और फिर छटिकरा से लेकर नंदगांव तक उस बुढ़िया के गोद में बैठकर भगवान ने यात्रा की। इमेजिन। तो क्या सार है इस स्टोरी का, कि इच्छा जो है ना वो शुद्ध होनी चाहिए, उसमें वो कलमश नहीं होना चाहिए, मेरा स्वार्थ थोड़ा सा, तुम्हारा स्वार्थ सेवा, मेरा स्वार्थ, विन विन सिचुएशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ निरपेक्ष सेवाओं का भाव होना चाहिए, और जो इष्ट है हमारे उसी की पसंदता के लिए हमारा कार्य और इच्छा होनी चाहिए। हमारा कैसा होता है, पहले हमारा लिस्ट भगवान को पेश करते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमको चाहिए, फिर भगवान हो सके तो आप खुश रहना वीआईपी, लेकिन मेरा लिस्ट पूरा करना। और हर बार लिस्ट डिफरेंट और बड़ा आता है, हर बार गरुड़ गोविंद में आते हैं तो एक नया लिस्ट होता है जो सबमिट करते हैं, कि पता नहीं कितना पूरा हुआ नहीं हुआ, कितना आपको भी याद है नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन हर बार नया लिस्ट रहता है। उस दिन जो दिन आएगा जीवन में, जिस दिन में हमारे मन में हमारे लिए कुछ नहीं इच्छा होगी और केवल कृष्ण के पसंद के लिए, प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए इच्छा होगी, उस दिन से कृष्ण हमारे हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम हमारे लिए मांग रहे हैं, हमारा आनंद, हमारी संतुष्टि हमारे केंद्र स्थान में है, आपको खाली यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग यू इन द नेम, आपका नाम यूज करके हमारी इच्छा पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय आएगा कि आपका नाम लेकर आपके आनंद के लिए हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि सांस, धड़कन, हर चीज़ आपकी सेवा में होगी और होना चाहिए, वही जीवन का उद्देश्य है। हर सांस, हर धड़कन उनकी सेवा में होगा तो भगवान कोई दूर नहीं है, भगवान आपके हृदय में बैठकर वेट कर रहे हैं, कब मेरी ओर देखेंगे। तो ये भाव है ना, इसको स्वीकार करने के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रज में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भाव बड़ा आसानी से प्राप्त होता है, वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होता है। वहाँ पर बड़ा ऐश्वर्य है, चकाचौंध आँखें जो है ना वो तिलमिला जाती है वहाँ पर। यहाँ पर केवल प्रेम है और प्रेम की प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। साधु लोग बताते हैं कि यहाँ पर कथा में भी ज़्यादा तत्व ज्ञान नहीं बताना चाहिए, फिलोसॉफी, सांख्य योग वगैरह की चर्चा ज़्यादा यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर केवल लीलाओं का ही चर्चा होना चाहिए, भगवान के स्वरूप के विषय में और धाम के विषय में और लीलाओं के विषय में चर्चा होनी चाहिए, ज़्यादा सिद्धांत की चर्चा नहीं करनी चाहिए। कुछ यहाँ पर साधु ऐसे हैं जो कोई आते हैं ना बाहर के, हिमालय से कुछ आते साधु आते हैं कथा करने के लिए, तो यहाँ के साधु चिढ़ते हैं उनके ऊपर, अरे क्यों उनको बुलाते हो, वो खाली वो परमात्मा एक रूप होना और क्या सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सारष्टि, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसका कोई स्थान नहीं यहाँ पर। Nobody is interested in मुक्ति हियर। यहाँ पर मुक्ति और भुक्ति दो चीज़ें हैं, भुक्ति यानी एन्जॉयमेंट जिसको लिए हम तड़पते हैं, भुक्ति, और एक है जो भुक्ति नहीं मिलने के बाद जो फ्रस्ट्रेट होते हैं वो मुक्ति चाहते हैं। अभी बहुत कोशिश किया, मिलता नहीं तो बोलते हैं वैराग्य आ जाता है, ये चाहिए ही नहीं हमको। जैसे आकाश में उधर पेड़ पे बेर लगे हुए हैं, मीठे मीठे बेर हैं, बहुत ऊँचे हैं, बोलते हैं खट्टे होंगे शायद, नहीं चाहिए हमको क्योंकि क्यों नहीं मिल रहे, इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग विरक्त हो जाते हैं। अधिकतर विरक्त लोग कैसे होते हैं, बिकॉज देयर इज नो अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय, इसलिए दे चूज विरक्ति। बट सही विरक्ति कौन सी है, जो आसक्ति के आधार पर बनी हुई है, वो सही विरक्ति है। कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, वो सब गिर जाता है अपने आप ही। ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये लाल फूल भी छोड़ रहा हूँ, ये सफ़ेद फूल भी छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो अपने आप गिर जाते हैं। प्रेम इतना होता है भगवान के लिए कि वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी ही नहीं पड़ती, वो अपने आप कब गिर गई समझ में नहीं आएगा आपको। तो प्रेम के आधार पर आसक्ति, भगवान के लिए आसक्ति के आधार पर जो विरक्ति होती है वो महान होती है। हाँ, और यहाँ पर क्या हो गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो यहाँ पर केवल भगवान के लीलाओं के बारे में चर्चा होनी चाहिए, जो यहाँ की भूमि उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करती है, गुणित कर देती है। तो ऐसा ये सुंदर स्थान है, इसको आप ग्रहण कीजिए अपने इंद्रियों से, इनकी लीलाओं को स्मरण कीजिए। वो 105 साल की गोपी को स्मरण कीजिए, कितना प्रेम था उसके हृदय में, कितना प्रेम था। देखो भगवान जब प्रेम होता है ना तो नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर देते हैं, इम्पॉसिबल थिंग कैन बी इजीली मेड पॉसिबल बाय प्योर डिज़ायर। और उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, अमीरी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अधिकार में भी बड़ा होना चाहिए, नाम होना चाहिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा भगवान जहाँ जितनी सिंप्लिसिटी हो ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं वहाँ पर, है ना। वो जनाबाई के घर पे जाके चक्की पीसते थे उसकी, उसकी भैंस धोते थे भगवान, क्या क्या अगर नहीं किया भगवान ने। वेश्या के घर में जाकर भी भगवान ने मुकुट स्वीकार किया है, जब वो रजस्वला थी, ऐसी एक भक्त थी, भक्त यहाँ पर, तो पहले वेश्या थी, बाद में भक्त बनी, और फिर अपना सारा दौलत दान में दे दिया, और एक दिन भगवान के लिए मुकुट बनाया, और मुकुट बनाने को भगवान बनाकर भगवान को पहनाने गई तो रजस्वला हो गई वो। तो भगवान ने उसको बहुत संकोच हुआ, अरे क्या दुर्भाग्य है मेरा, देखो इतना मैं अभी मुकुट पहनाने जा रही हूँ तो मुझे मासिक धर्म हो गया। तो वो दुखी होकर रोने लगी, भगवान मूर्ति से बोले, अरे पहना दे मुझे तू, आई डोंट केयर। ऐसे हमारे भगवान है, ऐसे अद्भुत कथाएं यहाँ पर है, भगवान कैसे प्रेम को रिस्पॉन्ड देते हैं। तो वैसे 105 साल की बुढ़िया को कोई चांस नहीं था, उसके गोद में ठाकुर जी आए, लेकिन आए वो। और वैसे ही हमारे जीवन में हो सकता है, अगर हम वो 105 साल की गोपी के तरह भाव अगर अपनाएंगे तो हमारे लिए भी वो दूर नहीं है। वो कुछ को भेदभाव नहीं करते, नहीं नहीं वो 105 वाले के मैं करूँगा, आपको नहीं करूँगा, ऐसे नहीं होता है। वो दिल देखते हैं, भावग्राही है ना, उनका नाम भावग्राही है। वो बुद्धिग्राही, मनग्राही, विचारग्राही नहीं है, वो भावग्राही है। जैसे श्रवण और कीर्तन का सार स्मरण है, वैसे हमारी पूरी चेतना का सार भाव है, उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मक्खन, मक्खन जो है वो दूध का सार है, तो मंथन करने से फिर वो मक्खन क्या दूध के अंदर से ही मक्खन पैदा होता है दही के माध्यम से, है सब कुछ दूध में ही, लेकिन उसको प्रक्रिया करने से फिर वो तुरंत से ऊपर आ जाता है। वैसे भगवान वो हमारे हृदय के दूध का नवनीत जो है वो चोरी करते हैं, वो चाहते हैं उसको, इसलिए उनका नाम नवनीत चोर है, माखन चोर है। हो गया समय? तो माखन पहले पैदा कीजिए हृदय में, भक्ति की साधना का मंथन कीजिए, उसको पहले जमाइए, फिर मंथन कीजिए, फिर धीरे 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 ऊपर आएगा, फिर धीरे ऊपर आएगा, फिर और करिए, फिर वो इकट्ठा हो जाएगा, फिर भगवान को ऐसे लेने लायक हो जाएगा, फिर वो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस समय, आओ आओ ले लो ले लो, वो आपका आने के यहाँ देखने के पहले गायब हो जाएगा वो। हाँ ऐसा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये अनप्लान्ड कृपा करने के लिए सब गरुड़ गोविंद जी का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि धाम में वही होता है जो भगवान चाहते हैं। जो आपको अपने कम अपने घर में क्या दिखाना है ये घर का मालिक तय करता है कि चलो आज प्रभु जी आए हैं, उनको तिजोरी भी खोल के दिखा देंगे, कितना गहना है कितना पैसा है दिखा देंगे, और बॉन्ड है ना वो जो रखा हो बैंक में उसका पेपर भी दिखा देंगे। वो मालिक की मर्जी है ना, उसको लगेगा कि ठीक है बेडरूम में ले गए हैं तो तिजोरी भी दिखा देते, सेफ भी खोल के दिखा देते। वैसे भगवान हम धाम में आते तो अपने मर्जी से अपना दालन अपना सेफ खोल देते हैं। आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि भगवान थैंक यू वेरी मच, आपके घर आए हैं, जैसे रखो आपकी इच्छा है, जो खिलाओ आपकी इच्छा है, जहाँ ले जाना है आपकी इच्छा है, जो सुनाना है आपकी इच्छा है। मैं भी ऐसा ज़्यादा कुछ प्लान करके आता नहीं हूँ, जो मुझे लगता है वो बोलते रहता हूँ, पता नहीं अच्छा बोलता हूँ कि बुरा बोलता, बात तो नहीं है, लेकिन जो जो लगता है वो बोलते रहता हूँ, वो भी उनकी मर्जी है, वो मेरा कोई श्रेय नहीं उसके अंदर, वो बुलवाते हैं, और वो आप जो आपके मन में जो भाव है ना वो मेरे मुंह से बुलवाते हैं सब उसके अनुसार। तो श्रोता जो है ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वक्ता इम्पोर्टेंट नहीं होता है, श्रोता के हृदय के भाव के अनुसार भगवान वक्ता के मुख से बोलते हैं, और आपके मन में जो इच्छा है वो भगवान वक्ता के मुख से आपको देते हैं। हरे कृष्णा।